का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी चट्टानों में आग का पहला भाग। इसे लिखा है इब्ने सफी। कर्नल जरगाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वो अधेड़ उम्र का मजबूत शरीर वाला रौबदार आदमी था। मूछें घनी और नीचे की तरफ को थी। बार बार अपने कंधों को इस तरह हिलाता था जैसे उसे डर हो कि उसका कोट कंधों से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो कम से कम हर 2 मिनट में अपने कंधों को जरूर हिलाता था। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी पर फिक्र भरी नजरें डाली और फिर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और फिजा बेहद दिलकश, मगर कर्नल जरगाम की बेचैनी, वो इन दोनों में से किसी से भी आनंद नहीं उठा सकता था। अचानक किसी के आहट पर चौंक कर वो मुड़ा। दरवाजे में उसकी जवान लड़की सोफिया खड़ी थी। ओ डैडी, 10 बज गए, लेकिन शायद गाड़ी लेट है, जरगाम कुछ सोचता हुआ बोला। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सोफिया आगे बढ़ी, उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जरगाम वैसे ही बाहर देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? सोफिया आहिस्ता से बोली। ओफो, मैं कहता हूं कि आखिर तुम्हारी नजरों में इन वाकयात की कोई अहमियत क्यों नहीं है? कर्नल जरगाम मुड़कर बोला। मैंने ये कभी नहीं कहा, मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि आप बहुत ज्यादा फिक्र करके जहन को थकाने का काम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा? सोफिया बोली। अब मैं इसका क्या करूं कि हर पल मेरी उलझने बढ़ती चली जाती हैं। क्या कोई नई बात है? सोफिया के लहजे में हैरानी थी। क्या तुमने कैप्टन फयाज का तार नहीं पढ़ा? पढ़ा है, और इस वक्त उसी के बारे में गुफ्तगू करने आई हूं। तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में पड़ गई हो?
जी हाँ। आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग ना आए तो काफी ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ, ऐसा आदमी भेजा ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं? और फिर वो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है।
बस यही चीज मुझे उलझन में डाले हुए है, कर्नल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा और हम क्यों तंग आएंगे?
उन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? सोफिया ने कहा।
भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फयाज बड़ा उसूल का पक्का आदमी है। इस प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब नहीं समझा होगा। कर्नल जरगाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। गुप्तचर विभाग के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज ने उनके चचा के कहने पर एक आदमी भेजा था जिसे लेने के लिए वे स्टेशन आए हुए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उन दोनों ने भी कैप्टन फयाज का तार देखा था और आने वाले के बारे में सोच रहे थे। ये दोनों जवान सुंदर, स्मार्ट और पढ़े लिखे थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए दोनों में दोस्तों की सी बेतकल्लुफी थी और आरिफ अनवर को उसके नाम से ही पुकारता था। यार, ये कैप्टन फयाज का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। और इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा? हाँ छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग। कर्नल साहब खामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं, अनवर बोला। भाई ये तो तुम्हारी ज्यादती है, इन हालात में तुम भी वही करते जो वो कर रहे हैं, आरिफ ने कहा। अरे छोड़ो, कहां के हालात और कैसे हालात, अरे सब उनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई थी। घर में आखिर बिल्लियां रोएंगी,
तो खानदान पर कोई ना कोई आफत तो जरूर आएगी। उल्लू की आवाज सुनकर दम निकल जाएगा।
अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी या कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशगुनी। सुबह ही सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। भाई वाह,
अरे इस मामले में तो मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है, आरिफ ने कहा।
अरे मुझे तो ताव आता है, अनवर भन्ना कर बोला।
पुराने आदमियों को माफ करना ही पड़ता है भाई।
ये पुराने आदमी हैं? मुझे तो उनकी बात से किसी तरह का पुरानापन नजर नहीं आता, सिवाय पुराने ख्यालात के, अनवर झल्ला कर बोला।
अरे यही सही, बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है।
तेज किस्म की घंटी की आवाज से दोनों चौंक पड़े। ये ट्रेन के आने का इशारा था। ये एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था। यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर 8 या 10 आदमी ही नजर आ रहे थे। उनमें नीली वर्दी वाले खलासी भी थे, जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते थे जैसे वे स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज हो। खाना बेचने वाले ने अपना जालीदार लकड़ी का संदूक, जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी, मोढ़े से उठाकर कंधे पर रख लिया। पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाले ने, जो अभी मुंह से तबला बजा रहा था और एक अश्लील गीत गा रहा था, अपनी ट्रे उठाकर गर्दन में लटका ली। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई प्लेटफॉर्म से लग गई। अनवर और आरिफ गेट पर खड़े रहे। पूरी ट्रेन से सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और 1 जवान आदमी, जिसके जिस्म पर खाकी गैबर्डीन का सूट था। बाएं कंधे पर गिलाफ में बंद की हुई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। ज्यादा मुमकिन यही था कि इसी आदमी के लिए अनवर और आरिफ यहां आए थे। वे दोनों उसकी तरफ बढ़े।
क्या आपको कैप्टन फयाज ने भेजा है? अनवर ने पूछा।
अगर मैं खुद ही ना आना चाहता तो उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं भेज सकते थे, मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा।
जी हाँ ठीक है, अनवर जल्दी से बोला।
क्या ठीक है? मुसाफिर पलकें झपकाने लगा। अनवर बौखला गया। अरे वही जो आप कह रहे हैं।
ओह,
मुसाफिर ने इस तरह कहा जैसे वो पहले कुछ और ही समझा हो। आरिफ और अनवर ने अर्थपूर्ण नजरों से एक दूसरे को देखा।
हम आपको लेने आए हैं, आरिफ ने कहा।
हाँ तो चलिए ना, मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रखकर उस पर बैठते हुए कहा। अनवर ने कुली को आवाज दी।
क्या?
मुसाफिर ने हैरत से कहा। ये एक कुली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों बौखलाए और फिर हंसने लगे।
जी नहीं, आप जरा खड़े हो जाइए, अनवर ने शरारती अंदाज में कहा।
मुसाफिर खड़ा हो गया। अनवर ने कुली को सूटकेस उठाने का इशारा करते हुए मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया।
यूं चलिए, ला हौल विला कुव्वत, मैं तो कुछ और ही समझा था,
मुसाफिर गर्दन झटक कर बोला। उसने अनवर और आरिफ को संबोधित करते हुए कहा, शायद तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आरिफ हंसने लगा, लेकिन मुसाफिर इतनी संजीदगी से चलता रहा जैसे उसे इस बात से कोई सरोकार ही ना हो। बाहर आकर वे कार में बैठ गए। पिछली सीट पर अनवर मुसाफिर के साथ था और आरिफ कार चला रहा था। अनवर ने आरिफ को संबोधित करते हुए कहा,
क्या कर्नल साहब और कैप्टन फयाज में कोई मजाक का भी रिश्ता है?
आरिफ ने फिर कहकहा लगाया। वे दोनों सोच रहे थे कि इस मूर्ख मुसाफिर के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा।
जनाब का इसमें शरीफ, अचानक अनवर ने मुसाफिर से पूछा।
कलियर शरीफ, मुसाफिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। दोनों हंस पड़े।
आए, इसमें हंसने की क्या बात है?
मुसाफिर बोला। मैंने आपका नाम पूछा था, अनवर ने कहा।
अली इमरान, MSc PhD।
MSc PhD? आरिफ हंस पड़ा।
आप हंसे क्यों?
इमरान ने पूछा।
नहीं, मैं तो दूसरी बात पर हंसा, आरिफ जल्दी से बोला।
अच्छा, तो आप मुझे तीसरी बात पर हंसने की इजाजत दीजिए, इमरान ने कहा और बेवकूफों की तरह हंसने लगा। वे दोनों और जोर से हंसे। इमरान ने उनसे भी तेज कहकहा लगाया और थोड़ी ही देर बाद अनवर और आरिफ ने महसूस किया जैसे वो खुद ही बेवकूफ बन गए हैं। कार पहाड़ी रास्तों में चक्कर काटती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई। इमरान ने उन दोनों के नाम पूछे। अनवर सोच रहा था कि खासा मजा रहेगा, कर्नल साहब की झल्लाहट देखने के लायक होगी। ये बेवकूफ आदमी उनका जीना हराम कर देगा और वे पागलों की तरह सिर पीटते रहेंगे। अनवर ठीक ही सोच रहा था, कर्नल था भी झल्ले किस्म का आदमी। अगर उसे कोई बात दोबारा दोहरानी पड़ती तो उसका पारा चढ़ जाता था। उनका इमरान जैसे आदमी के साथ क्या होगा। आधे घंटे में कार ने कर्नल की कोठी तक का सफर तय कर लिया। कर्नल अब भी बेचैनी से उसी कमरे में टहल रहा था और सोफिया भी वहीं मौजूद थी। कर्नल ने इमरान को ऊपर से नीचे तक तौलने वाली नजरों से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कैप्टन फयाज तो अच्छे हैं। अजीत तौबा कीजिए, निहायत नामकूल आदमी है, इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने कंधे से बंदूक उतार कर सोफे के हत्थे पर लटका दी। क्यों, नामकूल क्यों, कर्नल ने हैरत से कहा। बस यूं ही, इमरान संजीदगी से बोला, मेरा ख्याल है कि नामकूलियत की कोई वजह नहीं होती। खूब, आपकी तारीफ, कर्नल उसे घूरने लगा। जी अब अपने मुंह से ही अपनी क्या तारीफ करूं, इमरान शर्मा कर बोला। अनवर किसी तरह जब्त ना कर सका, उसे हंसी आ गई और उसके फूटते ही आरिफ भी हंसने लगा। ये क्या बदतमीजी है, कर्नल उनकी तरफ मुड़ा। दोनों यकायक खामोश हो गए और बगलें झांकने लगे। सोफिया अजीब नजरों से इमरान को देख रही थी। मैंने आपका नाम पूछा था, कर्नल ने खंखार कर कहा। कब पूछा था, इमरान चौंक कर बोला। अरे अभी तो, कर्नल के मुंह से बेसाख्ता निकला और वे दोनों भाई अपने मुंह में रुमाल ठूंसते हुए बाहर निकल गए। इन दोनों की शामत आ गई है, कर्नल ने गुस्साई आवाज में कहा और वो भी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उन दोनों को दौड़ कर मारेगा। इमरान बेवकूफों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही निर्विकार भाव से जैसे उसने ना कुछ देखा हो ना ही सुना हो। सोफिया कमरे में ही रह गई थी और उसकी आंखों में शरारती चमक लहराने लगी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया, सोफिया बोली। इस पर इमरान ने अपना नाम डिग्रियों समेत दोहरा दिया। सोफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे यकीन ना आया हो। क्या आपको अपने यहां आने का मकसद मालूम है, सोफिया ने पूछा। मकसद? जी हाँ, मकसद मालूम है, इसीलिए मैं अपने साथ एयरगन भी लाया हूं। एयरगन? सोफिया ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, मैं हाथ से मक्खियां नहीं मारता। कर्नल जो पिछले दरवाजे में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था झल्ला कर आगे बढ़ा। मैं नहीं समझ सकता कि फयाज ने ये बेहूदगी क्यों की, उसने सख्त लहजे में कहा और इमरान उनको खड़ा घूरता रहा। देखिए है ना नामकूल आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था, इमरान चहक कर बोला। आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएंगे, कर्नल ने कहा। नहीं, मैं तो एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। जी नहीं शुक्रिया, कर्नल खिन्न होकर बोला। मैं आधा मुआवजा देकर आपको विदा करने पर तैयार हूँ। आधा मुआवजा कितना होगा?
ये तो मक्खियों की तादाद पर है, वैसे एक घंटे में मैं 1.5 दर्जन मक्खियां मार लेता हूँ। और
बस बस, कर्नल हाथ उठाकर बोला, मेरे पास बेकार की बातों का वक्त नहीं है।
डैडी प्लीज, क्या आपको तार का मजमून याद नहीं है?
हाँ, कर्नल कुछ सोचने लगा। उसकी नजरें इमरान के चेहरे पर थीं जो मूर्खों की तरह बैठा पलकें झपका रहा था। तुम ठीक कहती हो। अब उसकी नजरें इमरान के चेहरे से हटकर उसकी बंदूक पर जम गईं। उसने आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और फिर उसे गिलाफ से निकालते हुए बुरी तरह बिफर गया। क्या बेहूदगी है, ये तो सचमुच एयरगन है। इमरान के इत्मीनान में जर्रा बराबर भी फर्क ना आया। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल का पारा इतना चढ़ा कि उसकी लड़की उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर निकाल कर ले गई। कर्नल सोफिया के अलावा किसी और को खातिर में ना लाता था। अगर उसकी बजाय किसी दूसरे ने यह हरकत की होती तो वो उसका गला घोंट देता। उनके जाते ही इमरान इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे बड़ी सुखद घटना घटी हो। थोड़ी देर बाद सोफिया वापस आई और उसने इमरान से दूसरे कमरे में चलने के लिए कहा। इमरान खामोशी से उठकर उसके साथ हो लिया। सोफिया ने भी इसके अलावा और कोई बात नहीं की। शायद वो कमरा पहले ही से इमरान के लिए तैयार रखा गया था। घड़ी ने एक बजाया और इमरान बिस्तर से उठ गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई थी। बरामदे में रुककर उसने आहट ली, फिर तीर की तरह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा थे। सोफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई थी। अनवर और आरिफ बेहद बोर नजर आ रहे थे। सोफिया की आंखें नींद की वजह से लाल थीं और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा था जैसे कि वो कोई बुत हो। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। इमरान को देख उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। क्या बात है, क्यों आए हो, उसने गरज कर पूछा।
एक बात समझ में नहीं आ रही है, इमरान ने कहा।
क्या?
कर्नल के लहजे में सख्ती दूर नहीं हुई थी। अगर आप कुछ अजनबी आदमियों से डरे हुए हैं तो पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं देते?
मैं जानता हूं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती।
क्या वे लोग सचमुच अजनबी हैं?
हाँ।
बात समझ में नहीं आई।
क्यों?
सीधी सी बात है, अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनसे डरने की क्या वजह हो सकती है?
कर्नल जवाब देने के बजाय इमरान को घूरता रहा। बैठ जाओ, उसने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान बैठ गया। मैं उन्हें जानता हूं, कर्नल बोला।
तब फिर पुलिस, जाहिर सी बात है।
क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो,
कर्नल बिगड़ कर बोला।
जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से सिर हिला दिया। क्या?
कर्नल उछलकर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने ये बात इसलिए कही कि आप लोग किसी वक्त भी उन गोलियों का निशाना बन सकते हैं, इमरान ने लापरवाही से हाथ उठाकर कहा।
क्यों?
वे किसी भी वक्त इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं।
नहीं दाखिल हो सकते, बाहर कई पहाड़ी पहरा दे रहे हैं।
फिर इस तरह राइफलें सामने रख कर बैठने का क्या मतलब है, इमरान सिर हिलाकर बोला।
नहीं कर्नल साहब, अगर आप भी इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको उसे सारे हालात के बारे में बताना पड़ेगा। मैं यहां आपके बॉडीगार्ड का काम करने नहीं आया हूं।
डैडी, बता दीजिए ना, ठीक ही तो है, सोफिया बोली।
क्या तुम इस आदमी को भरोसे के काबिल समझती हो?
इनकी अभी उम्र ही क्या है, 60-60 साल की बूढ़ियां भी मुझ पर भरोसा करती हैं, इमरान ने सोफिया की तरफ इशारा करके कहा।
सोफिया बौखला कर घूरने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अनवर और आरिफ हंसने लगे। दांत बंद करो,
कर्नल ने उन्हें डांटा और वे दोनों बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। आप मुझे उन आदमियों के बारे में बताइए, इमरान ने कहा।
कर्नल कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाया।
मैं नहीं जानता कि क्या बताऊं। क्या आपने इस दौरान उनमें से किसी को देखा है?
नहीं। फिर मैं शायद पागल हो गया हूं, कर्नल उसे घूरने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं उन लोगों के निशान से वाकिफ हूं। इस निशान का मेरी कोठी में पाया जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मैं खतरे में हूं।
इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ मोड़े और सीटी बजाई, फिर आहिस्ता से पूछा, वो निशान आपको कब मिला?
आज से 4 दिन पहले।
खूब, क्या मैं उसे देख सकता हूँ?
भाई, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं मालूम होता, तुम कल सुबह वापस चले जाओ,
कर्नल उकता कर बोला। हाँ, हो सकता है मैं भी रोगी हो जाऊं, आप मुझे दिखाइए ना।
कर्नल चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने बुरा सा मुंह बनाया और उठकर एक मेज का दराज खोला। इमरान उसे ध्यान से और दिलचस्पी से देख रहा था। कर्नल ने दराज से कोई चीज निकाली और अपने सोफे पर वापस आ गया। इमरान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अनवर और आरिफ ने अर्थपूर्ण नजरों से एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे वे इमरान से किसी मूर्खतापूर्ण वाक्य की उम्मीद रखते हों। कर्नल ने वो चीज छोटी सी गोल मेज पर रख दी। 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर था। इमरान उसे मेज से उठाकर उलटने पलटने लगा। वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसी मेज पर रखकर कर्नल को घूरने लगा। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? इमरान बोला।
पूछो, बोर मत करो।
ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला, फिर सोफिया वगैरह की तरफ देखते हुए कहने लगा, हो सकता है कि आप लोग मेरे सवालों का जवाब देना पसंद ना करें।
हाँ, बोर मत करो,
कर्नल उकताए हुए लहजे में गुस्सा कर बोला। खैर, मैंने एहतियातन ये ख्याल जाहिर किया था, इमरान ने लापरवाही से कहा, फिर कर्नल को घूरते हुए बोला, क्या कभी आपका ताल्लुक ड्रग्स की तस्करी से भी रहा है? कर्नल उछल पड़ा। वो फिर से इमरान की तरफ इस तरह घूरने लगा जैसे उसने उसे डंक मार दिया हो। फिर वो जल्दी से लड़कों की तरफ मुड़कर बोला, जाओ तुम लोग आराम करो। उसके भतीजों के चेहरे खिल उठे, लेकिन सोफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो नहीं जाना चाहती।
तुम भी जाओ,
कर्नल अधीरता से हाथ हिलाकर बोला। क्या ये जरूरी है? सोफिया ने कहा।
जाओ,
कर्नल चीखा। वे तीनों कमरे से बाहर निकल गए।
हाँ, तो तुमने क्या कहा था?
कर्नल ने इमरान से कहा। इमरान ने फिर अपना वाक्य दोहरा दिया।
तो क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो?
कर्नल ने लकड़ी के बंदर की तरफ इशारा किया। बहुत कुछ, इमरान ने लापरवाही से कहा।
तुम कैसे जानते हो?
ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मेरे सवाल का कोई ही जवाब नहीं दिया, इमरान मुस्कुरा कर बोला।
नहीं, मेरा ताल्लुक ड्रग्स की तिजारत से कभी नहीं रहा।
तब फिर, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, आप उन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? वरना ये निशान इस कोठी में क्यों आया?
खुदा की कसम, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो,
कर्नल बेचैनी में अपने हाथ को मलता हुआ बोला। लेकिन मैं तो कल सुबह वापस जा रहा हूं।
हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं।
अगर मैं कल वापस ना गया तो उस मुर्गी को कौन देखेगा जिसे मैं अंडों पर बिठा आया हूं?
अच्छे लड़के, मजाक नहीं।
मैं बहुत परेशान हूं। आप ली यूका से डरे हुए हैं, इमरान सिर हिलाकर बोला। इस बार फिर कर्नल उसी तरह उछला जैसे इमरान ने डंक मार दिया हो।
कौन हो तुम?
कर्नल ने खौफजदा अंदाज में कहा। अली इमरान, MSc, PhD।
क्या तुम्हें सचमुच कैप्टन फयाज नहीं भेजा है? और मैं कल सुबह वापस भी चला जाऊंगा।
नामुमकिन, नामुमकिन। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम ली यूका के बारे में कैसे जानते हो?
ये मैं नहीं बता सकता।
लेकिन ली यूका के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। वो एक चाबी है, उसके नाम से ड्रग्स की नाजायज तिजारत होती है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, इमरान ने कहा।
बिल्कुल ठीक लड़के, तुम खतरनाक मालूम होते हो।
मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं।
बकवास है, ये सब बकवास है।
लेकिन तुम कैसे जानते हो?
कर्नल बड़बड़ाया। मगर कहीं तुम उसी के आदमी तो नहीं हो?
कर्नल की आवाज हलक में फंस गई। बेहतर है मैं कल सुबह।
नहीं नहीं,
कर्नल हाथ उठाकर चीखा। अच्छा ये बताइए कि ये निशान आपके पास क्यों आया?
मैं नहीं जानता।
शायद आप इस बेवकूफ आदमी का इम्तिहान लेना चाहते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा।
खैर तो सुनिए,
ली यू का 200 साल पुराना नाम है।
लड़के, तुम्हें यह जानकारी कहां से मिली?
कर्नल उसे प्रशंसात्मक नजरों से देखता हुआ बोला।
यह बात ली यूका के गिरोह वालों के अलावा किसी और को नहीं मालूम।
तो मैं ये समझ लूं कि आपका ताल्लुक भी उसके गिरोह से रह चुका है, इमरान ने कहा।
हरगिज नहीं, तुम गलत समझे।
फिर ये निशान आपके पास कैसे पहुंचा? आखिर वे लोग आपसे किस चीज की मांग कर रहे हैं?
ओह, तुम ये भी जानते हो,
कर्नल चीख कर बोला और फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। इमरान के होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी।
लड़के, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे कैप्टन फयाज ने भेजा है।
अचानक कर्नल टहलते टहलते रुक गया। आप बहुत परेशान हैं। मेरे पास फयाज का खत मौजूद है। लेकिन अभी से आप इतना परेशान क्यों हैं? ये तो पहली वार्निंग है, बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने इस दौरान भी उनकी मांग पूरी ना की तो फिर वो मुर्ग भेजेंगे और उसके दूसरे ही दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सी मांग है? कर्नल कुछ ना बोला। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था और आंखें इमरान के चेहरे पर थी, लेकिन वो आखिर अपने होठों पर जबान फेर कर बोला, लेकिन तुम कुछ जानने के बाद अब तक जिंदा कैसे हो?
सिर्फ कोका कोला की वजह से।
संजीदगी, संजीदगी, मुझे फयाज का खत दिखाओ। कर्नल ने अधीरता से हाथ उठाया। इमरान ने जेब से खत निकालकर कर्नल की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल काफी देर तक उस पर नजरें जमाए रहा, फिर इमरान को वापस करता हुआ बोला,
मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो।
मैं हर किस्म का आदमी हूं। फिलहाल आप मेरे बारे में कुछ ना सोचिए। जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे उतना ही अच्छा होगा। कर्नल के चेहरे से हिचकिचाहट जाहिर हो रही थी। वो कुछ ना बोला। अच्छा ठहरिए, इमरान ने कुछ देर बाद कहा, ली यूका के आदमी सिर्फ एक ही सूरत में इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो एक ऐसा गिरोह है जो ड्रग्स की तस्करी करता है। ली यूका कौन है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन तिजारत का सारा नफा उसको पहुंचता है। कभी उसके कुछ एजेंट्स बेईमानी पर आमादा हो जाते हैं, वे ली यूका की मांगें पूरी नहीं करते। इस सूरत में उन्हें इस किस्म की वार्निंग मिलती है। पहली धमकी बंदर, दूसरी धमकी सांप और तीसरी धमकी मुर्ख। अगर आखिर धमकी के बाद भी वे उसकी मांगें पूरी नहीं करते तो उनका खात्मा कर दिया जाता है।
तो तुम ये समझते हो कि मैं ली यूका का एजेंट हूं?
ऐसी सूरत में और क्या समझा जा सकता है?
नहीं, ये गलत है।
फिर
मेरा ख्याल है कि मेरे पास ली यूका का सुराग है।
कर्नल बड़बड़ाया, सुराग? वो किस तरह?
कुछ ऐसे कागजात हैं जो किसी तरह ली यूका के लिए शक पैदा करने वाले हो सकते हैं।
देखिए, शक होना और चीज है, लेकिन सुराग? इमरान नहीं के हिसाब से सिर हिलाकर रह गया।
ये मेरा अपना ख्याल है।
आखिर आपने किस वजह से ये राय कायम की है? इमरान ने पूछा।
ये बताना मुश्किल है। वैसे मैं इन कागजात में से कुछ को बिल्कुल ही नहीं समझ सका।
लेकिन वे कागजात आपको मिले कहां से?
बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से।
कर्नल सिगार सुलगाता हुआ बोला,
पिछली जंग के दौरान मैं हांगकांग में था, वहीं ये कागजात मेरे हाथ लगे। और यह हकीकत है कि जिससे मुझे ये कागजात मिले वो मुझे गलत समझ रहा था। हुआ ये कि एक रात मैं हांगकांग के होटल में खाना खा रहा था, एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर मेज के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूं, इसे B14 पहुंचा देना। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो तेजी से बाहर निकल गया। बात हैरत अंगेज थी। मैंने चुपचाप लिफाफा जेब में डाल लिया। मैंने सोचा कि मुमकिन है वो चीनी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का आदमी रहा हो और ये कुछ अहम कागजात मेरे जरिए किसी ऐसे सेक्शन में पहुंचाना चाहता हो जिसका नाम B14 हो। मैं उस वक्त अपनी पूरी वर्दी में था। होटल से वापस आने के बाद मैंने लिफाफा जेब से निकाला, वो सील किया हुआ था। मैंने उसे उसी हालत में रख दिया। दूसरे दिन मैंने B14 के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में इस नाम का कोई इदारा ना था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग ही ना मिला। आखिर मैंने तंग आकर इस लिफाफे को खोल डाला। तो केस में ली यूका के बारे में पूरी रिपोर्ट थी? इमरान ने पूछा। नहीं, वे तो कुछ तिजारती किस्म के कागजात हैं। ली यूका का नाम उनमें से कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी हैं, जिन्हें मैं समझ ना सका।
फिर आपको ली यूका की हिस्ट्री किस तरह मालूम हुई?
ओह, तो फिर मैंने हांगकांग में ली यूका के बारे में छानबीन की थी, मुझे सब कुछ मालूम हो गया था। लेकिन ये ना मालूम हो सका कि ली यूगा कौन है और कहां है। उसके एजेंट्स आए दिन गिरफ्तार होते रहे, लेकिन उनमें से आज तक कोई ली यूगा का पता ना बता सका। वैसे ये नाम 200 साल से जिंदा नहीं है। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, ये लोग कब से आपके पीछे लगे हैं?
आज की बात नहीं है, कागजात मिलने के 6 माह बाद ही से वे मेरे पीछे लग गए थे, लेकिन मैंने उन्हें वापस नहीं किए। कई बार वे चोरी छुपे मेरे घर में भी दाखिल हुए, लेकिन उन्हें कागजात की हवा भी ना लग सकी। अब उन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, यानी मौत के निशान भेजने शुरू किए हैं, जिसका ये मतलब है कि अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अच्छा, वो चीनी भी आपको कभी दिखाई दिया जिससे कागजात आपको मिले थे?
नहीं, वो कभी भी दिखाई नहीं दिया।
कुछ देर तक खामोशी रही और फिर इमरान बड़बड़ाने लगा,
आप उसी वक्त तक जिंदा हैं जब तक कागजात आपके कब्जे में हैं।
बिल्कुल ठीक, तुम वाकई बहुत जहीन हो।
यही वजह है कि मैं इन कागजात को वापस नहीं करना चाहता, वरना मुझे इनसे जरा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये समझ लो कि मैंने सांप का सिर पकड़ रखा है, अगर उसे छोड़ता हूं तो वो पलट कर यकीनन डस लेगा।
क्या मैं उन कागजात को देख सकता हूं?
हरगिज नहीं।
तुम मुझसे सांप की गिरफ्त ढीली करने को कह रहे हो? इमरान हंसने लगा और फिर उसने कहा, आपने कैप्टन फयाज को क्यों बीच में डाला?
उसके फरिश्तों को भी असल वाकयात की खबर नहीं, वो तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे कुछ आदमियों की तरफ से खतरा है, लेकिन मैं किसी वजह से सीधे पुलिस को इस मामले में दखल देने की दावत नहीं दे सकता।
तो आप मुझे भी ये सारी बातें ना बताते?
इमरान ने कहा, बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान की रूह मालूम होती है।
इमरान की। बहरहाल, आपने मुझे बॉडीगार्ड के तौर पर बुलाया है।
मैं किसी को भी ना बुलवाता, ये सब कुछ सोफिया ने किया है, उसे हालात का इल्म है।
और आपके भतीजे?
उन्हें कुछ भी नहीं मालूम।
आपने उन्हें कुछ बताया तो होगा ही?
सिर्फ इतना कि कुछ दुश्मन मेरी ताक में हैं और उनका निशान बंदर है।
लेकिन इस तरह भरी हुई राइफलों के साथ रात भर जागने का क्या मतलब है? क्या आप ये समझते हैं कि वे आपके सामने से आकर आप पर हमला करेंगे?
मैं ये भी बच्चों को बहलाने के लिए करता हूं।
खैर, मारिए गोली, इमरान ने लापरवाही से कंधों को हिलाते हुए कहा। मैं सुबह की चाय के साथ बताशे और लेमन ड्रॉप्स इस्तेमाल करता हूं। आप सुन रहे थे कहानी चट्टानों में आग का पहला भाग। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए भाग 2।